जैसे आपको बताया कि ये सूरत जो थी ये मक्की दौर के आखिरी वक्त में तकरीबन उतरी थी और आगे मदीना में जाके एक नई रियासत की तश्कील भी होने वाली है। अब ऐसे दौर में वो अहकामात दिए जा रहे हैं कि जो एक इस्लामी माशरे को पाकीज़ा रखने के लिए, सही चलाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो उस माशरे के अंदर खसूसियात होनी चाहिए, जो जाबते होने चाहिए, वो रूल्स यहाँ पे बयान किए गए हैं। और इनके अंदर हम पढ़ चुके हैं दो रूल्स, दो प्रिंसिपल्स, के एक तो मुस्लिम माशरा तौहीद के ऊपर कायम होने वाला, तौहीद उसका बेसिक जो पिलर है ना वो तौहीद है। और इसलिए आप देखते हैं कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इया आयत 23 में अगर आप देखें तो सबसे पहले तौहीद की बात की गई, शिर्क सी की नफी ऐसे माशरे में होनी चाहिए। ये नहीं कि जगह जगह शिर्क के अड्डे बने, ये नहीं होना चाहिए। और आप आज के दौर में इन आयात के तनाजुर में मुस्लिम ममालिक को देख सकते हैं, जहाँ पे भी इस्लामी एक माशरा है वहाँ पे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल किया जा रहा है और कौन कौन से हुक्म हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि अल्लाह ताला कैसा माशरा चाहते हैं, कि एक इस्लामी माशरा किन अकदार पे, किन बेसिस पे खड़ा हो, उसकी क्या कदरें होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए उसके अंदर। और अगर कोई माशरा इन वैल्यूज को तोड़ता है, इन प्रिंसिपल्स को पीछे डालता है, तो सरीहन अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। क्योंकि आज की आयात में हम एंड में पढ़ेंगे ये बात कि ये जो इसके अंदर बुराइयां बताई गई ये अल्लाह ताला के हाँ बहुत नापसंदीदा है। जिस माशरे में नापसंदीदा काम हो रहे हैं वो माशरा ना तो तरक्की कर सकता है, ना तो अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार हो सकता है। लिहाजा ये प्रिंसिपल्स अपने माशरे के अंदर हमें इस्टेब्लिश करने हैं, इनके ऊपर चलना, तभी वो एक मुस्लिम माशरा, इस्लामी माशरा कहलाएगा, वरना किसी तरह भी नहीं कहला सकता। तो जहां पर तौहीद का बोलबाला और जहां पर वालदेन के साथ एहसान हो, एहसान की भी हम बात पढ़ चुके, एहसान अदले का बदला नहीं होता, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ये बचपन में ये करते थे, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे तवज्जो नहीं दी, मुझे ये किया, इतने गिले शिकवे, और उसके बाद आप सोचते हैं कि वालदेन के साथ आप अच्छा सलूक कर सकेंगे। नहीं, एहसान इज वन वे ट्रैफिक, रिमेंबर दिस, एहसान क्या है, वन वे ट्रैफिक है, एहसान इज नॉट टू वेज। इन्होंने किया तो मैं ये करूंगी, इन्होंने नहीं किया तो हमें भी नहीं करना, नो। और यहाँ पर तो थोड़े हकूक की बात की गई है, सूरह निसा में अगर आप देखें तो वहां पे भी इसी तरह की आयत आती, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ वबिलवालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन, और उसके अंदर और भी कई फहरिस्त, उसमें लिस्ट लंबी है, उसमें और भी कई ताल्लुकात को निभाने का और एहसान करने का हुक्म। तो यहाँ पर खास तौर पे वालदेन के जब वो ओल्ड एज में हो जाएं तो उनके लिए ऐसी कोई भी बात करना जो नाज़ेबा हो, अदना अदना सा भी नागवारी का इजहार जिसमें हो और अदना तरीन दर्जा उफ कहने का है, वो इतना उफ भी नहीं कहना, उफ इज द लीस्ट, और अब उससे बड़ी बड़ी चीजों की तो वैसे ही नफी हो गई जब उफ कह दी। ये मतलब नहीं कि उफ नहीं कहना लेकिन बाकी सबको कह दो, सब कुछ कह दो, यू आर नॉट फेयर, और आप जो है ना नॉनसेंस बातें करते हैं, आप इलॉजिकल बातें करते हैं, आपको क्या पता, आप चुप करके बैठे हैं, आप ऐसे करें, यू आर मीन, और ऐसी ऐसी बातें, ये किसी तरह भी फिर सही नहीं। बदसलूकी की अदना तरीन सूरत ये भी है कि फेशियल एक्सप्रेशंस नागवारी के बना ले, वो भी नहीं है, हूँ कह देना ये भी मना है। बल्कि उनके साथ बात करो तो नरमी के साथ करो, और खास तौर पे बूढ़े वालदेन का क्यों कहा गया, इसलिए कि बूढ़े वालदेन जब हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनके साथ सब्र की ज्यादा जरूरत होती है, उनकी अकल वैसी नहीं रहती, अकल भी उनकी माऊफ सी हो जाती है, बच्चों जैसी बातें करने लगते हैं, नासमझी की बातें करने लगते हैं, कभी कभी अनफेयर भी हो जाते हैं, और वाकई हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी फरमाया कि नहीं, वग़फ़िर लहुमा जनाह सुल्ह, आप उनके सामने अपने कंधे झुका के रखे, एक बुजुर्ग थे तो वो अपने वालिद के सामने, वालदैन के सामने सीधे खड़े नहीं होते थे, तो लोग पूछते आप सीधे क्यों नहीं खड़े होते, फरमाया क्यों, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कुरान में कि अपने कंधे झुका के रखो उनके सामने, यानी ये आजजी की अलामत है, आजजी। इमाम बगवी ने अपनी तफसीर में लिखा है, सईद बिन मुसैद ताबई के हवाले से लिखा है, कि एक मिसाल दी है कि इसकी मिसाल यूं समझे कि इंसान उस वक्त ऐसे नरमी से बात करना इंसान का ऐसे हो कि जैसे इंसान नौकर है किसी का, और उसका आका बहुत सख्त मिजाज हो, और नौकर से कोई गलती हो जाए तो अपने आका के सामने जब खड़ा होगा बात करेगा तो उसका रवैया कैसा होगा, ऐसे ही इंसान अपने वालदेन से बात करे हमेशा, ये है कौलन करीमा भी, और ये है अपना झुका के रखना अपने आप को, ये नहीं कि आपने हमें कुछ दिया ही नहीं, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने तो मेरा यहाँ पे रिश्ता करके मेरी जिंदगी खराब कर दी, आपने मुझे कभी अच्छा ही नहीं समझा, आपको तो बात ही नहीं करनी आती, आपको तो ऐसे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये ताने सुनाना, ये इस तरह की बातें करना तो बहुत बड़ी है, जबकि आप उफ भी नहीं कह सकते, और इसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि वो वालदेन नेक थे कि वो वालदेन बद थे, वो वालदेन, वालदेन भी जाहिर इंसान है, बुरे भी इंसान होते हैं और अच्छे भी होते हैं, वालदेन डजंट मीन कि वो कोई नबी है, वालदेन आम इंसान ही है, लेकिन उनका जो औलाद उनकी है उसको उनके साथ भलाई ही करनी है, वालदेन चाहे कितने भी इररिजनेबल हो जाएं उनका हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ है, जो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा, लेकिन औलाद को अल्लाह ताला ये इजाजत नहीं देता कि वो वालदेन को कटहरे में खड़ा कर दे और आप उनसे हिसाब किताब शुरू कर दे, पूछगिछ शुरू कर दे, आपने बचपन में ऐसे क्यों किया था, आपने ये क्यों किया था, वो क्यों किया था, और इसकी बेस पे उनसे बदसुलूकी करे, किसी तरह पे भी नहीं ये जाए। अब कई दफा वालदेन ने विरासत की तकसीम में, कई दफा लेने देने में बच्चों के, कई दफा मोहब्बत में इंसाफ नहीं किया होता, कई दफा किसी एक को ज्यादा लाड प्यार करते हैं, कोई उनका फेवरेट बच्चा हो जाता है, दूसरे को इग्नोर किया होता है, या कई दफा किसी बच्चे से ज्यादा वो शफकत का मामला करते हैं, किसी तरफ से आपको शिकायत होती है कि वो जी फलां बच्चा उनको उनके पर खर्च बहुत करता है इसलिए उसको अच्छा समझते हैं, हम खर्च नहीं कर पाते तो हमें नहीं अच्छा समझते, ये वालदेन का उनके अल्लाह के हाँ पूछ गिछ है जो भी है, लेकिन कभी भी औलाद को ये इजाजत नहीं है कि वो वालदेन के आगे अपनी आवाज को रेज करें या उनको बुरा भला कहें या उनके साथ बदतमीजी करें, झिड़कना तो दूर की बात है। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, अब आगे ये देखें, ये वाले मैंने आपको बताया था, अपने अब्बास फरमाते हैं कि एक इस्लामी जो सॉरी जो तौरात में जो अहकामात दिए गए उनका खुलासा ये आयात है, तौरात के तमाम अहकामात का खुलासा, यानी तौरात में भी यही चीजें थी, यहूदियों को भी यही बात कही गई, टेन कमेंडमेंट्स में भी यही था, और हमें भी ये बात कही गई, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, देखिए आप स्टार्ट में ही देख लें इसका, वकदा रब्बू का, अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है, ये फैसला किसका है, याद रखिएगा ये बातें, ये नहीं है कि कोई आपको ऐसे ही लेक्चर दे रहा है, नसीहत कर रहा है, अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है, और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर इन बातों को पीछे करना ये अपना अपनी बर्बादी करना ही है, और आप ये भी समझ जाएं कि ये जो यहाँ पे वालदेन की बात हुई है ना, ये समझ लें वालदेन जो है ये जन्नत का टिकट है, आप चाहे तो आप जन्नत के टिकट को गंवा दें और चाहे तो आप जन्नत के टिकट को इस्तेमाल कर लें, और आपके घर में हैं, आपसे दूर हैं या फौत हो चुके हैं, जो जिस तरह से भी मामला, उसके मुताबिक करना। जो जिनके पास तो वालदैन हैं उनके समझ लें घर में अल्लाह ने उनको टिकट दे दिया जन्नत का। अब आगे वो इसको अगर जाया कर देते हैं अपने किसी अमल से तो ये उनकी बदकिस्मती होगी। अब इसके बाद किसका हक है, वालदैन के बाद किसका हक सबसे ज्यादा है? आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 26 से हम देखते हैं। वाती दल कुरबा हक्कहू, और दो रिश्तेदारों को उनका हक, माँ बाप के बाद आपके हुस्ने सलूक के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? दल कुरबा, जो करीबी हैं, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, माँ की तरफ से भी जितने रिश्ते चल रहे हैं और बाप की तरफ से भी जितने रिश्ते चल रहे हैं, दादा दादी चचा पुप्पी उनके बच्चे को, और इसी तरह माँ की तरफ से नाना नानी खाला खालू मामू मामानी उनके औलादें, इस तरह से आगे हदीस में है, अपनी माँ से सलूक करो और अपने बाप से, फिर जो ज्यादा करीब हो और जो ज्यादा करीब हो। और हाँ, बहन भाई, सबसे पहले तो बहन भाई ही आ जाते हैं, क्योंकि बहन भाई माँ बाप के साथ आपकी वो उनकी आगे एक्सटेंशन है आपके वालदेन की, तो उनको उनका हक दो। हक हम तो नहीं समझते कि रिश्तेदारों का हमारे ऊपर कोई हक है। हक जो है ना, जो हक होता है वो दूसरे का हक हमारे ऊपर क्या हो जाता है? फर्ज। यानी जब हम कहते हैं कि उसका हमारे ऊपर हक है, तो ये भी एक वन वे ट्रैफिक हो गया। ये नहीं सोचना कि मैंने तो इनको इतना दिया, इन्होंने मुझे क्या दिया। ये बहुत जल्दी आ जाता है, शैतान लाता भी है, और बाकी हमें सबको चाहे ये बातें पता भी है ना, फिर भी हमें बार बार इनको दोहराने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंसान देखता है रिटर्न भी क्या मिला, मुझे क्या दे रहे हैं ये, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, और ये कभी थैंकफुल होते ही नहीं। तो ये मुकाबले की बात नहीं है कि उसने दिया तो मैंने दिया, तो मैंने दिया और उसने कितना दिया, नहीं। यहाँ पे है उसका हक कहिए, आपकी कमाई में भी हक है, आपके हुस्ने सलूक के लिए भी उसका हक है। आप अब मसलन ईद आ रही है, रूठे भी रिश्तेदारों को फोन करके उनके साथ मामला दुरुस्त कर लें, उनका हाल अहवाल पूछ लें। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे रिश्तेदार कौन है, कहाँ है, किस हाल में है, किसका पता चलता है? कहीं कोई बता देता है, हाँ जी फलां हमारी रिश्तेदार वो बेवा हो गई, फलां है वो यतीम हो गए बच्चे वो, तो हम बस ठीक है, हो गए तो हो गए, जस्ट न्यूज़ फॉर अस। नहीं, उनका हक है, ये अल्लाह ने मुकरर किया, और ये ऐसा नहीं है कि लेन देन का मामला है, ये कोई आप बाजार में नहीं खड़े कितना किसने दिया और कितना मैंने दिया, बल्कि कुरान कहता है कि ये उनके हकूक हैं आपके ऊपर। लिहाजा जो अदला बदला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अदले बदले है वो सिला रहमी करना नहीं होता। दरअसल सिला रहमी करने वाला तो वो होता है कि जो आपसे कटे आप उससे जुड़ो, तब है सिला रहमी। अदला बदले से तो फिर आप किसी अजनबी के साथ भी, कोई भी अवरा चलता भी है अदला बदला, तो उसके साथ भी आप किसी को कुछ देते हैं, वो आपको कुछ दे देता है, वो तो चलता ही है। लेकिन कुरान हमें कहता है कि ये ऐसे उसको दो जैसे कि उसका आपके ऊपर हक है। ये नहीं देखना ये मेरे किसी काम आने के काबिल हैं भी कि नहीं, कल को इन्होंने मेरे क्या काम आना है, इनसे मुझे क्या फायदा मिलेगा, बल्कि ये सोच के दो कि अल्लाह का हुक्म है, और तब कोई एहसान नहीं हो सकता ये, इसलिए कि आप उसको उसका ही हक दे रहे हैं, ये उसी का हक था। याद रखें दोस्त अहबाब से तो सभी अच्छे होते हैं, पता तब चलेगा कि आप रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं, उनके साथ आपका सलूक क्या है। तो रिश्तेदारी के अंदर हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, रिश्तेदारी निभाना आसान नहीं होता, इसलिए ही रिश्तेदारों को उनका हक देने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रवाहुल बुखारी, ये बुखारी की रिवायत है, आप इस कान खोल के सुन लें, कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब यहाँ तो रिश्तेदारों के साथ जोड़ लें, तो यहाँ पे नहीं जोड़ना तो फिर जन्नत को छोड़। क्या ये वर्थ है कि रिश्तेदारों से तोड़ना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और हमारी अना इतनी बड़ी है, और हम इतना अपने आप को कोई चीज समझते हैं, और हमारा गुस्सा इतना है, या उसने मेरे साथ ज्यादती ऐसी किया कि बस मैं नहीं इससे दोबारा जोड़ूंगी, तो फिर जन्नत को छोड़ दे। कुछ भी वो कर ले, लेकिन उनके साथ तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पे तो रहम के रिश्ते भी नहीं कहा गया, यहाँ पे तो कहा गया जल कुर्बा, कराबतदार। दो तरह के कराबतदार है ना, एक तो हमारे साथ जो नसब के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और एक जो है वो ससुराली रिश्ते होते हैं, शोहर की तरफ से रिश्तेदार। उनके साथ भी नहीं तोड़ना, उनको भी उनका हक देना है। और बहुत सारे गिले, शिकवे, शिकायतें होती हैं, इसने ऐसे कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया वो, इसमें बहुत सारी तो गलत फहमियां आती हैं। चलो कहीं गलत फहमी नहीं भी है और वाकई ही ऐसा हुआ भी है, तब भी तोड़ नहीं सकते। हाँ, वाजबी तौर पे आप रख सकते हैं अगर वाकई ऐसा है, बाकी तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और हमें भड़काने वाले भी बहुत होते हैं, देखो तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम ही पागल हो, तुम ही उनके पीछे लग रही हो, तुम ही उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो तुम्हारे साथ ये करते हैं, छोड़ो इनको। या छोड़ना चॉइस नहीं है ना हमारी, क्या करें, बल्कि जोड़ना हमारे लिए जरूरी है। और जिसके लिए जो ये पसंद करता है ना कि उसकी रोजी में फरागी हो, उसकी उम्र दराज हो, उसको चाहिए कि सिला रहमी करें। ये भी हदीस है बुखारी की। तो आज देख लें कि दोस्त अहबाब से तो हम जुड़े हुए हैं, खाला चाचू, दोस्त अहबाब को तो मैं खाला बनाई हुई हैं, उन्हीं में चाचू बनाए हुए हैं, उन्हीं में ये बनाए हैं, लेकिन जो असल रिश्ते हैं उनके बारे में कोई खैर खबर ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं। इसीलिए इस चीज को समझें कि हम अपनी औलादों को भी बताएं कि हम आपके रिश्तेदार कौन है, उनका खुद भी हाल अहवाल मालूम करें, और अपने बच्चों को भी ताकीद करें। और बच्चों को कब पता चलेगा कि उनके रिश्तेदार कौन है, जब आप उनसे मिलवाएंगे। अगर आप उनसे मिलवाते ही नहीं, कभी उनके बारे में पूछते ही नहीं, कभी उनसे मिलना जुलना ताल्लुक रखते ही नहीं, कभी हुआ कोई शादी हो गई या कोई मर हुई तो तब उनके पास चले गए, वरना साल साल गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं, तो फिर बच्चों को भी कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से रिश्ते निभाने। तो खुद भी राबते में रहें, बच्चों को भी रखाएं, क्योंकि देखिए याद रखिए, आपको किसी का कितने भी गिले शिकवे, आपके बच्चों की जो दादी, फूफी, चचा, ये मामू, खाला, ये सब उनके रिश्ते तो हैं ना, उनके साथ आप खुद भी गुनाहगार होते हैं जब तोड़ते हैं, और उनको भी गुनाहगार करते हैं जब उनको कहते हैं कि तुमने भी नहीं मिलना, वो तुम्हारी माँ के साथ ऐसे और तुम जाके उनसे मिल रहे, उनको भी आप गुनाहगार करते हैं। तो ये रिश्ते जो निभाना है ना, ये माना कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती जैसी फ्रेंड से मिलती है, और हो सकता है वो आपके जैसे जो आपका माइंड सेट है, जिस तरह से आपके घर का तरीका है, उस तरह से चलने वाले नहीं। मिसाल के तौर पे आपका घर बड़ा दीनदार है, वो बड़ा डिफरेंट तरह के लोग हैं, फिर भी निभाना। किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी फिर खत्म कर देनी है क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसे आप। ये निभानी क्यों है, इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद है कि नहीं पसंद, इसलिए नहीं कि वो आपके लाइक माइंडेड हैं या नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए हमें कुछ पैसे खर्च करके अपनी फैमिलीज के साथ विजिट भी करना पड़े बैक होम, ताकि हम अपने बच्चों को मिलाएं वहां पे अपने रिश्तेदारों से, तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, वरना रिश्तों की पहचान खत्म हो जाएगी। तो इसमें एफर्ट भी लगेगी, इसमें माल भी लगेगा, इसके अंदर आपका टाइम भी लगेगा, तो इसको अहमियत दें, इसको अहम समझें ये जरूरी है, क्योंकि ये चॉइस होती है ना। अगर आप नहीं भी मिलेंगे तो कोई पूछेगा थोड़ी आपको, कहीं कोई सजा थोड़ी है इसके ऊपर किसी कानून में कि जो नहीं मिलेगा, जो तोड़ेगा तो उसके लिए ये सजा है। बाकी तो जरायम की सजा है, इसमें कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बुरा नहीं समझेगा आपको, वो पूछने वाला ही नहीं। लिहाजा वही ये करेगा जो अल्लाह ताला के हुक्मों का पास रखता हो, जो रिस्पेक्ट करता हो अल्लाह के हुक्म की। तो हम में से कौन है जो अल्लाह ताला के हुक्मों को रिस्पेक्ट देते हैं? हमने मिलाना है, हमने जोड़ना है, और हमने जोड़ के रखना है अपने बच्चों के रिश्तों को भी। हमने मिसाल बनना है, जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आगे बच्चे, क्योंकि आगे का दौर ऐसा आ रहा है जिसमें किसी को किसी की परवाह नहीं। वालदैन को बच्चे नहीं पूछते तो आगे बच्चे अपने वालदैन को अगर नहीं पूछते, आगे रिश्तों को क्या पूछेंगे? अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे उनके रिश्तों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी मोहब्बतें कायम रखने के लिए, उनके साथ मिलें जुलें, रिश्तेदारों को बुलाएं, उनके यहाँ जाएं, ताकि बच्चों की भी एक बॉन्डिंग हो उनके साथ, बॉन्डिंग कायम करें, ताकि हम नहीं भी रहें और हमारे पास सवाल हो तो हम ये कह सके कि अल्लाह हमने तो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की थी, बाद में वो नहीं मिलते या मिलते हैं वो उनके ऊपर, हमने क्या किया? और अगर हम खुद ही लापरवाह हैं तो आगे समझ लें कि वो रिश्ते यहीं पे खत्म हो गए। इसीलिए बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरी माँ की खाला कौन है, मेरी माँ की चच्चा कौन है, या खाला जात बहन भाई कौन से हैं, और या बाप की तरफ के कौन से हैं, कुछ पता नहीं होता। क्योंकि ये नेग्लिजेंस वालदैन की तरफ से होती है, क्योंकि वालदैन खुद भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते। और आगे आगे तो दौर ऐसा आ रहा है कि मसरूफियत इतनी है कि किसी को फुर्सत ही नहीं कि किसी का हाल भी पूछ ले। लिहाजा आपसे ये पूछनी होगी कि आपने अपने दोस्तों से कितना निभाया, दोस्तों के साथ आप कितनी पार्टीज करती थी, दोस्तों के साथ आप कितना मिलके बैठती थी, आपके दोस्त कितना आपका हल्का अहबाब बड़ा था, आपके कितने दोस्त आपके चाहने वाले थे। ये आपसे पूछ नहीं होनी, आपके चार दोस्त थे या आपके दोस्तों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शादियों पे आप 100 लोगों को बुला रहे हैं लेकिन रिश्तेदारों को नहीं बुला रहे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार या तो गरीब हैं इसलिए हम उनको नहीं सामने लाना चाहते, या हमारे रिश्तेदारों में से हम उनसे रूठे हुए या वो हमसे रूठे हुए, लिहाजा वो आए ही नहीं, या हमें नहीं इतना टाइम कि हम उनको मनाएं। लिहाजा हमारी शादियों में सारे हमारे दोस्त अहबाब तो भरे हैं, रिश्तेदारों की कोई परवाह ही नहीं। तो ये नहीं होना, इसलिए कि यहाँ पे पहला हक बताया गया उनका, उनका हक है आप कि आप उनसे हुस्ने सलूक करें, उनका हक है कि आप उनके ऊपर स्पेंड करें। अब जरूरी नहीं कि रिश्तेदार गरीब हैं तो आप उनके ऊपर स्पेंड करेंगे, रिश्तेदारों को इस तरह भी स्पेंड किया जा सकता है कि उनको गिफ्ट्स दें, उनके गिफ्ट दे के उनके दिल जीते। किसने बड़ी प्यारी नसीहत की अपनी बेटी को, कि जब वो अपने ससुराल में गई तो उसने कहा कि, उस माँ ने कहा अपनी बेटी को कि जब भी आपको वहां पे किसी की कोई चीज नागवार गुजरे तो आप गिफ्ट देना शुरू कर देना, और खूब गिफ्ट्स देना, आप देखेंगे कि वो जो उनकी कड़वाहट है वो मिठास में बदल जाएगी। तो रिश्तेदारी निभाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप गिफ्ट दिया करें, आप देखेंगे कि उससे बहुत फायदा होगा। इसी तरह हदीस में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बेहतरीन सदका क्या है, तो फरमाया जो रिश्तेदार पड़ोसी हो, यानी पड़ोसी अगर रिश्तेदार है ना तो उसके 3 अजर आपको मिलेंगे उसके ऊपर स्पेंड करने में, एक रिश्तेदारी का, दूसरे वो कि वो पड़ोसी है, तीसरा सदका करने का। सदका सिर्फ किसी पे भी किया जाता तो 1 अजर था, लेकिन अब 3 अजर हो गए। तो अगर इंसान यही सोचने लगे मैं कितना दूं, उसने कितना दिया, फिर मैं गिनूं, फिर उसके बाद देखूं अच्छा मैं उतना ही उसको दूं और इतना ही उसके बच्चों को दूं, ये आप क्या रिश्तेदारी निभा रहे हैं, ये तो सौदा कर रहे हैं आप। जैसे हम बाजार में खड़े होकर चीज खरीदते हैं, भाई मैं $10 दूंगी तो 10 की चीज मिलनी चाहिए, ये तो सौदेबाजी है ना, ये तो फिर निभाना ना हुआ। तो लिहाजा रिश्तेदारी निभाना वो है कि जब इंसान इसको समझे कि मैंने करते जाना है, वो करे या नहीं करे इसका हक है मेरे ऊपर। अपना फरीजा समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के करें। और चैरिटी बिगिंस एट होम है ना एक मुहावरा, तो वाकई करीब से शुरू करें। ये नहीं कि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, वहां पे जी वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बेचारी भी ढूंढ रही होती है लोगों को जो मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अगर हर बंदा अपने रिश्तेदारों की केयर करना शुरू कर दे तो कोई भी मुआशरे में बेसहारा नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी ना किसी का तो रिश्तेदार होगा ना। कितना प्यारा वो मुआशरा हो जाएगा जिसमें बगैर लालच के, बगैर गर्ज के, बगैर किसी एहसान के, उनके ऊपर भी एहसान नहीं करना जी, हमने आपको इतना फलां वक्त में आपकी शादी पे हमने तो इतना खर्चा किया और आपने तो हमें बुलाया नहीं था, हमने भी नहीं इनको बुलाना, और वो तो हमारी शादी पे आए नहीं थे, हमने भी नहीं जाना। नहीं, कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। बगैर एहसान के जहां पे दूसरे की मदद कर रहे हैं, जहां पे दूसरे के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सोचे वो माशरा कितना पाकीजा होगा। सोचे उस माशरे में क्या कोई अकेला होगा। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में देने से पहले अपने रिश्तेदारों में नजर दौड़ाएं, आपको डबल अजर मिल जाएगा। जकात में पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, रिश्तेदारों में तो नहीं है कोई जो जकात का मुस्तहिक है। फिर वल मिस्कीना, और मिस्कीन को, मिस्कीन वो है जो हैंड टू माउथ है, जो ये नहीं कि उसके जॉबलेस को मिस्कीन कहते हैं, हो सकता है उसके पास जॉब भी हो लेकिन मसला ना इतने बच्चे हैं, फिर और कोई उनके मसले मसाइल, कहीं बीमारी आ गई, कि कहीं के घर की कुछ रिपेयर का मामला आ गया, तो ये सारे खर्चे करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो मिस्कीन है, बस गुजारे लाइक मुश्किल से चलता है, सफेद पोश इंसान है, तो उसको भी दें, ये भी उसका हक है। यानी इंसान सोचता है मैं कमाती हूँ, मेरा हक है मेरे माल पे, किसी और का कैसे हक हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, इनका भी हक है। अब न सबील और मुसाफिर का भी, मुसाफिर कौन है जो अपने वतन से दूर है, अपने घर से दूर है, वो मुसाफिर है, चाहे वो मालदार है लेकिन वो मुसाफिर, तो उसका हक बन गया। अब देखिए मुसाफिर भी जब अपने वतन से दूर होता है ना, तो जाहिर है दूसरी, अपने शहर में तो इंसान 100 लोगों को जानता है, लेकिन दूसरी जगह पे होता है तो वो इनसिक्योर फील करता है, अजनबी होता है, चाहे कितने भी होटल्स हो, चाहे कितने भी जगह हो। पर इस शहर के लोगों का काम है कि वो उसके साथ भला सलूक करें, इसीलिए 3 दिन की जियाफत भी है कि आप उसकी मेहमान नवाजी करें। अब कितना प्यारा माशरा हो जहां पे मुसाफिरों की जिम्मेदारी ली जाए, रिश्तेदारों को देखा जाए, मिस्कीन कोई ना रहे, उनके ऊपर स्पेंड किया जाए, वो कितना खूबसूरत माशरा हो। और बगैर गर्ज के, किसी किसी से कोई लालच नहीं है, ये समझ के कि इनका हक है जी, हम क्या करें, अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है मेरे ऊपर, मुझे तो ये करना ही करना है। जहां पे ये एटीट्यूड हो कि वो माशरा कैसा होगा, इमेजिन करें। और साथ साथ ये भी देखते जाएं, जब ये आयात पढ़ रहे हैं ना, तो साथ साथ ये भी सोचते जाएं कि कहाँ कहाँ पे हमें अपने आप को फिक्स करना। अगर आप रिश्तेदारों के साथ अच्छी हैं और आपके साथ, आपके सबके साथ ताल्लुकात अच्छी हैं, वो जो भी करते हैं आप उनसे फिर भी अच्छी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक टेस्ट में पास हो गए। अगर आप मिस्कीनों पे स्पेंड करने वाली हैं, मुसाफिरों पे स्पेंड करने वाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक टेस्ट में पास हो गए, दूसरे में भी पास हो गई, तीसरे में भी पास हो, तो अपने आप को इसमें चेक करें, वो कहाँ पे कमी है वहां पे हाईलाइट कर लें, यहाँ पे मैंने अपनी कमी को पूरा कर, यहाँ पे मैंने अपना फैमिली ट्री बनवाना है बच्चों से, मैंने अपने बच्चों को बताना है, उनके रिश्तेदारों के बारे में बताना है। ये आजकल गर्मियों की छुट्टियां, आप बच्चों को ये टास्क दें, ये होमवर्क दें, उनके साथ बैठे एक फैमिली ट्री बनाए, सब अपने रिश्तेदारों का बताएं, बाप की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, और फिर अपने माँ बाप की तरफ से भी जो आपके रिश्तेदार लगते हैं, फिर अपने बहन भाइयों के, उनके बच्चों का, और फिर देखेंगे कितने हद तक हमने अपने बच्चों को एजुकेट किया है रिश्तेदारों के बारे में। अब बहुत सारे लोगों का ये जरूर क्वेश्चन आएगा, वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, उसने ऐसे कर दिया, फौरन जैसे ही ये आयतें इस किस्म की आती हैं, ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो तो ये किया, वो तो वो किया, फलाना किया, वैसे किया। मेरे देखें कह देने से कि जी आप उनके साथ फिर ना मिलें, आप उनके साथ ऐसे करें, इससे कोई मामला सॉल्व थोड़ी हो जाएगा, ये तो अल्लाह का हुक्म है, आप खुद देख लें। अब आपने अल्लाह को जवाब देना है, ना मुझे देना है ना किसी और। ना मैंने आपको, तो आपको अपने रिश्ते तो खुद ही निभाने हैं ना, अपनी कड़वाहटें अपनी जनरेशन में ना डालें। अच्छा फिर देखें, वला तुबसिर तबीरा, और ना तुम बेजा खर्च करो। अच्छा तबजीर का मैंने आपको जैसे बताया ना कि बस आप कहते हैं बीज को फैला देना, ऐसे ही फेंक देना इधर उधर, यानी अपने पैसों को ऐसे ही बेजा फजूल ना फेंके। आप जब तबजीर करेंगे ना तो आपके पास बचेगा क्या रिश्तेदारों पे, मिसकीनों और मुसाफरों पे खर्च करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो सिर्फ इतनी सी लिस्ट है ना, जब सूरह निसा के अंदर आपको वजार इजिल कुर्बा वजार इल जुनूब व साहिब बिल जंब इतनी लंबी लिस्ट आती है, तो वहां पे और भी लोगों का जिक्र है, वहां पे आप जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने लोगों का जिक्र है और फिर फरमाया देखो बेजा खर्च ना करो, क्योंकि बेजा जब आप खर्च करेंगे तो फिर इतना नहीं आपके पास रहेगा कि आप इनके ऊपर खर्च करें। और ये तबजीर क्या होती है, एक होती है फजूल खर्ची, इसराफ जिसको हम कहते हैं ना, इसराफ होता है जायज जगह पे बहुत ज्यादा खर्च कर दे। मसलन खाना पीना जायज है, लेकिन आप एक खाने के ऊपर इतना खर्च कर दें कि जितना किसी की बेचारे की पूरे महीने की तनख्वाह उतनी आप एक ईट आउट में खर्च करते। इतने महंगे होटल के अंदर चले गए जी, फलां जगह पे मैंने जाना है, वहां पे जाके इतनी सी प्लेट में आपने खा लिया और इतना महंगा बिल, इतना ज्यादा बिल आया कि कोई बेचारा पूरे महीने का इसमें राशन ला सकता था। ये है इसराफ। या कपड़ा इतना महंगा पहना, इतना महंगा पहना कि पता नहीं कितने लोगों के घरों के कपड़े बन सकते थे, उतने का आपने अकेले ने कपड़ा पहना लिया, ये इसराफ है। ठीक है, और इसराफ सिर्फ माल में नहीं होता, वक्त में भी, सलाहियतों में भी, इवन पानी में भी इसराफ है। कि जब इंसान पानी चलाए रखे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था ना कि अगर आप नहर के पास भी बैठे हो तो तब भी पानी में इसराफ नहीं कर सकते आप, वुजू करने में भी इसराफ हो जाता है जब आप टू मच पानी चला के उसको जाया कर रहे हैं। तो इसराफ सब चीजों के अंदर इसराफ होता है। वक्त, जहां पे वक्त इतना लगाने की जरूरत नहीं वहां पे वक्त लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, बस झाड़ू पोछा किए चले जा रहे, किए चले जा रहे, बस उसी को करते जा रहे। भाई इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि आप उस चीज के पीछे लग गए, आप वक्त का इसराफ कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों का इसराफ भी इंसान करता है। अपनी सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं किसी सही जगह पे लगाने के लिए, आपने पता नहीं कहाँ लगाते जा। और तबजीर तो है नाजायज काम पे खर्च करना, वहां पर खर्च करना जहां पे खर्च करना नहीं चाहिए, यानी ना वो आपकी जरूरत है ना उसके अंदर। मसलन है ऐसी मिसाल के तौर पर, जस्ट छोटी सी एग्जाम्पल है, सोफा जरूरत है, मेज जरूरत है, शीशा जरूरत है, ये जरूरत है, लेकिन डेकोरेशन पीसेस में हद से ज्यादा इसके अंदर खर्च कर देना। या एक शादी में आपने देखा होगा, उसकी व्हाट्सएप पे भी बहुत जगह पे वीडियो शेयर हुई कि कितने ज्यादा खर्च किया गया था, 16 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ था उस एक शादी पे, डेकोरेशन में सिर्फ, पता नहीं कहाँ से चीजें क्या लटक रही। ये तबजीर है, आतिशबाजी, ये फायरवर्क्स तबजीर है, पतंगबाजी करना तबजीर है, यानी इस ये नाजायज जगह पे खर्च करना, तबजीर यानी बेजा और बेपरवाह होके उसके ऊपर खर्च करना। तो तबजीर करना गाने बजाने के ऊपर, इनके ऊपर नाजायज काम है, उसके ऊपर इतना बेतहाशा खर्च किया हुआ है, और हमारा देख ले नमूदो नुमाइश के ऊपर, शो ऑफ के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, जो हम अपनी शादियों पे खर्च करते हैं, कई उनमें चीजें तबजीर की। हालांकि शादी करना तो हलाल जायज चीज है, लेकिन उसके ऊपर भी, उस शादी के नाम के ऊपर वो उड़ाते हैं, इतना उड़ाते हैं कि बेदर्दी से जिसको कहते हैं उड़ाना। तो इसराफ और तबजीर के अंदर फर्क है, और इसमें चाहे थोड़ा सा भी खर्च किया जाए, जो नाजायज जगह पे खर्च करना है या हराम जगह पे खर्च करना है, वो एक एक डॉलर भी खर्च कर दिया तो वो भी हराम है, वो भी बुरा है। तो फरमाया बेजा खर्च ना कर,